ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। आगामी बैसाख 30 गते होने वाले स्थानीय तह चुनाव में चुनावी तालमेल करने का सत्ता गठबंधन ने किया निर्णय। निष्पक्ष और तथ्यपरक समाचार संप्रेषण करने का प्रधानमंत्री ने संचार माध्यमों से किया आग्रह। और रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े अमेरिकी बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, अमेरिका पुतिन को नहीं समझता है, जो चिंताजनक है। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ दलों ने आगामी बैसाख 30 गते को होने वाले स्थानीय तह चुनाव में तालमेल करने का फैसला लिया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाचार में हुई बैठक में चुनावी तालमेल करने का फैसला लिया। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने दी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि देश के विकास के लिए संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रिपोर्टर्स क्लब के 24वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउबा ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि सूचना प्रविधि के मिथ्या और भ्रामक समाचार के संचार माध्यम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है, प्रधानमंत्री देउबा ने पत्रकारों से निष्पक्ष और तथ्यपरक समाचार संप्रेषित करने का आग्रह किया। मौके पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि प्रेस और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी संविधान ने ही कर दी है, इसलिए अब लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए संचार क्षेत्र को कलम चलाने की जरूरत है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि एमाले अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आज जुमला की सिंजा गांवपालिका के नगरकोट में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने कहा कि स्थानीय तह ही नहीं बल्कि प्रदेश और संघ के चुनावों में भी पांच दलीय गठबंधन के बावजूद एमाले अकेले बहुमत लाएगी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने दावा किया कि नेपाली जनता अब फिर माओवादी केंद्र पर भरोसा कर रही है। आज नेपालगंज में पार्टी के राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि जब जब देश पर संकट आया है तब तब माओवादी की अगुवाई में ही देश को निकास मिला है। ये स्वीकारते हुए कि विगत में पार्टी की ओर कमी कमजोरी हुई है, अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि अब पार्टी कोई गलती नहीं करेगी। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता वर्षमान पुन ने कहा कि माओवादी गठबंधन विरोधी नहीं है, लेकिन चुनावी गठबंधन सभी स्थानों में नहीं बल्कि वहां होगा जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है। प्रेस सेंटर नेपाल उपत्यका प्रदेश समिति द्वारा आज ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में नेता पुन ने ये बात कही। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आगामी स्थानीय तह चुनाव में सभी मतगणना स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आयोग की नियमित प्रेस मीट के दौरान आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड़ेल ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में भले संभव न हो लेकिन सभी 753 मतगणना स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और आयोग केंद्र से ही निरीक्षण करेगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गरौं, सबै प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न आनाकानी नगरौं।
नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले ने कहा कि नेपाल सभी जात जाति तथा धर्मावलंबियों की साझा फुलवारी है। आज नेपाल विश्व हिंदू महासंघ द्वारा काठमांडू में आयोजित हिंदू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री आले ने कहा कि हमारे संविधान में सभी जातियों का अधिकार समान हो, इस उद्देश्य के साथ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। परसा के पुखरिया में आज दो मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकराने से हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और अन्य तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे में परसा की धोबिनी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 गुलरिया के 35 वर्षीय ललन पटेल और परसा के ही सकुआ परसौनी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 एक डरवा निवासी 29 वर्षीय हसिंदर सहनी की मौत की जानकारी पुलिस ने दी। आज देशभर में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आज 89 संक्रमित कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसी तरह आज 60,260 लोगों ने कोरोना के वैक्सीन लगवाई, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने गुरुवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े अमेरिकी बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका पुतिन को नहीं समझता है, जो चिंताजनक है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से हाल में ही एक बयान सामने आया था, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके सलाहकार यूक्रेन और प्रतिबंधों के मुद्दे पर भ्रमित कर रहे हैं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय पेंटागन को असल जानकारी नहीं है कि यह क्या हो रहा है। अमेरिका के उप सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने आज भारत की राजधानी दिल्ली में कहा है कि अगर चीन LSC पर हमला करता है तो रूस भारत को बचाने के लिए नहीं आएगा। दिलीप सिंह ने एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध से भारत अमेरिकी रिश्तों के में आए बदलाव से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक साझेदारी रूस और भारत के बीच व्यापारिक साझेदारी की तुलना में 10 गुनी से ज्यादा बड़ी है। दिलीप सिंह ने कहा, सुरक्षा के मामले में भी समय बदल गया है। चीन और रूस ने नो लिमिट्स पार्टनरशिप यानी सीमा विहीन साझेदारी का ऐलान किया है। चीन ने कहा है कि रूस उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और इस साझेदारी में रूस जैसे जैसे एक जूनियर पार्टनर की जगह लेता जाएगा, वैसे वैसे रूस पर चीन का दबाव बढ़ता जाएगा। अगर इसके साथ ही यह स्थिति भारत के रणनीतिक रुख के लिए प्रतिकूल होती जाएगी। क्या कोई ये सोचता है कि अगर चीन LSC का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की मदद के लिए आगे आएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी बैसाख 30 गते होने वाले स्थानीय तह चुनाव में चुनावी तालमेल करने का सत्ता गठबंधन ने किया निर्णय। निष्पक्ष और तथ्यपरक समाचार संप्रेषण करने का प्रधानमंत्री ने संचार माध्यमों से किया आग्रह। और रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े अमेरिकी बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, अमेरिका पुतिन को नहीं समझता है, जो चिंताजनक है। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।